તારીખ 21-10-1993 શ્રી સમયસર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 36
एक द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरा गुण रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होते। और जब विकसित पर्याय होती है सिद्ध पद में, तो इससे आगे नहीं जाते, वो एक गुरुत्व है। पर निगोद में जाते तो सर्वथा अभाव रूप नहीं होते, ऐसा लघुत्व भी उसमें है। लघुत्व होने पर भी अलघुत्व भी है, तो गुरुत्व होने पर भी अगुरुत्व भी है इसमें। तो ये मोटे रूप में ये बात चलती है। इसका जो सूक्ष्म परिणाम और स्वरूप है वो तो केवल ज्ञान गोचर है। इसलिए इस विषय में जिनादन के सिवा अन्य मत में अगुरु लघु का विषय कहीं नहीं चला है। क्योंकि ये विज्ञान आप पदार्थ विज्ञान द्रव्य में सामान्य गुण है, तो पदार्थ का ये गुण केवल ज्ञान के अलावा ज्ञान गोचर नहीं होने से अन्य मतों के धर्म ग्रंथ में ये विषय कभी नहीं चला है। आजकल कौन सदगुरु है जहाँ अमृत भरा है, तो कैसे ध्यान में आवे, क्या कला है, दिखते तो नहीं कोई, तो फिर आगे का प्रश्न नहीं होता है। ऐसे कोई संत पुरुष जाने लिखने में तो नहीं आते, और फिर भी कोई बात हो तो व्यक्तिगत बात तो चर्चा तो हम नहीं करेंगे। तो बात है प्रकृति सिद्धांत की, उतनी अपनी मर्यादा रहेगी, तो व्यक्तिगत चर्चा की यहाँ परिस्थिति नहीं रहती है, उतनी मर्यादा में रखनी है।
उसको कैसे पहचान ऐसा तो नहीं,
हाँ इसके लिए तो योग्यता चाहिए, उत्कृष्ट मोक्ष है पहचान लेते हैं, उसके पास उस प्रकार का नेत्र है, मुमुक्षु का नेत्र महात्मा को पहचानते हैं। ये 254 नंबर का पत्र, इसमें नीचे की पंक्ति है, आत्मकल्याण और स्वपर कल्याण में क्या अंतर है। स्वपर कल्याण में तो दोनों का कल्याण है, और आत्मकल्याण में अपने अकेले का कल्याण है। लेकिन जिसको स्वपर कल्याण होए तो पर तो नियमित नैमित्तिक श्रवण से बोला जाता है, वास्तव में कोई करता करता नियमित नहीं होता। संत मुनिराज जो छठे गुणस्थान में उपयोग आता है, सातवें गुणस्थान में तो नहीं आता हो, बराबर पढ़ने में नहीं आता है। क्या लिखते हैं,
सम्यक्ति संत मुनिराज को छठे गुणस्थान में उत्सर्ग आता है, सातवें गुणस्थान में तो नहीं आता होगा, कृपा करें बताएं।
सातवें गुणस्थान उत्सर्ग की बात है, सातवें गुणस्थान में वो अंतर्लीन रहते हैं, तो उत्सर्ग का कोई बाह्य उपयोग तो नहीं होता, उपयोग अंतर में चला गया तो बाहर में क्या हो रहा है उसका पता नहीं चलता। छठे गुणस्थान में उत्सर्ग चालू हो गए
जी,
तो सर्ग से विमुख होकर के स्वरूप में लीन हो जाते हैं, तो उत्सर्ग के पर उसका विजय हो जाता है, वो जीत लेते हैं उत्सर्ग को, परिणाम बिगड़ते पर्याय का प्रदेश भिन्न है एवं द्रव का प्रदेश भिन्न है, ऐसा शुभ प्रवचन में आया था, स्पष्ट करें।
कल के प्रवचन का प्रचार है।
तो पर्याय का प्रवेश भिन्न है इसका और द्रव का प्रवेश भिन्न है इसका एक दृष्टांत के प्रवचन समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में आजकल टेलीविजन होते हैं, उस टेलीविजन के पर्दे पे अनेक प्रकार के पिक्चर आते हैं, दोनों का प्रदेश एक है या अलग अलग है? अगर एक होता तो दूसरा पिक्चर आ सकता नहीं, और सर्वथा अनेक होता तो वहां दिखता नहीं, यहाँ पर्दा है वहां पिक्चर दिखता नहीं। तो ऐसे सर्वथा दोनों का प्रदेश एक हो जाता तो पर्याय का नाश होने से द्रव्य का भी नाश
हो जाता है,
इसलिए दोनों का प्रवेश एक नहीं है। लेकिन ये बात हम आरंभिकता से समझते हैं, वास्तव में ये विवेक्षा अध्यात्म की रही, जिसको अपने स्वरूप में अहमपना आता है, जिसकी दृष्टि अपने स्वरूप को ग्रहण करती है अपने रूप में, तब अनादि जो पर्याय बुद्धि है वो मिट जाती है, क्योंकि दृष्टि पर्याय का स्वीकार नहीं करती। सम्यक दृष्टि की दृष्टि अपने पर्याय का स्वीकार नहीं करते, अपने रूप में सिर्फ टिका ही ध्रुव द्रव का ही स्वीकार करना, उसमें ही उनका कार्य समाप्त हो जाता है, स्वीकार करने का गुण है वो समाप्त होता है। तो इसलिए कहेंगे कि जो द्रव का द्रव में अगर इसका जो स्थान होता, इस द्रव के प्रदेश में अगर वो पर्याय होती तो ऐसा बन सकता नहीं। इसलिए जो दृष्टि के जोर से अपने ध्रुव द्रव्य में अपनत्व कर लेता है तो कहता है कि पर्याय का प्रदेश मेरे में नहीं है। उसको अध्यात्म में आत्मा के अवलंबन में आने के लिए ये बात कही गई है, मुख्य इसका ये उपयोग है। और कार्य कारण के श्रृंखला में द्रव्य का कारण द्रव्य है, गुण का कारण गुण है, पर्याय का कारण कार्य पर्याय है, आपस में तीनों सापेक्ष होने के बावजूद भी निरपेक्ष भी है, ये बात चित विलास में कारण कार्य के प्रकरण में दीपचंद जी साहब ने कही लिखी है, वहां से देखना। और वहां के पृष्ठ 95 की संख्या में, पृष्ठ संख्या में वो बात कही कि पर्याय का वीर्य भिन्न है द्रव्य से, पर्याय का क्षेत्र भी द्रव्य से भिन्न है, ऐसे चार गुण लिए हैं, उसमें पर्याय का क्षेत्र भिन्न है वो बात आई है, और इस बात का आधार यहाँ से देते थे। प्रदेश क्या बात है,
प्रदेश देश के प्रयोजन की सिद्धि
मानने से
होती है,
अध्यात्म में आने के लिए तो वो बात है।
एक प्रदेश से कौन से प्रयोजन की सिद्धि, निरूपण किया
जैसे कि पर्याय मात्र में अहम बुद्धि वो पर्याय मुंडा परसमया हो गया, जो आज प्राणों गाथा का आधार वैसा दिया था स्वाध्याय के द्वारा। अब जो है कि इस बुद्धि को इतने जोर से, ये झूठी मिथ्या बुद्धि को इतने जोर से धक्का लगाना है, जैसे कोई हमारे गले पे सर्प लगा हो, नागचूर जिसको कहते हैं, तो मौत से बचना है वो क्या करेंगे, तो उसको इतने जोर से उखाड़ना पड़ता है कि सर्प का कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे मरना नहीं है। ऐसे पर्याय बुद्धि की नागचूर है, उसको इतने जोर से धक्का देती है दृष्टि कि मेरा प्रवेश ही इसमें नहीं है, मेरा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि प्रवेश शुक्र गुण के पर्याय है ना अस्तित्व, तो मेरा अस्तित्व ही इसमें नहीं है। मेरा अस्तित्व को मैं ग्रहण करता हूँ मेरी दृष्टि से, दृष्टि का कार्य अस्तित्व ग्रहण है, तो सिर्फ उसमें द्रव्य में ही समाप्त होता है अस्तित्व। इसलिए कहते हैं कि पर्याय का क्षेत्र वहां नहीं है, पर्याय का अस्तित्व ही वहां नहीं है, इसलिए प्रवेश भिन्न है।
पर्याय में गुण वगैरह होते हैं क्या, या प्रवेश होते हैं क्या, द्रव्य में होते हैं गुण में, पर्याय में गुण है, उसमें अलग रखते हैं, उसमें गुण अलग से बनाते पैदा होते हैं, द्रव्य में होगा जो कुछ होगा, गुण भी द्रव्य में होगा, पर्याय द्रव्य में होगा।
आगम की अपेक्षा से ठीक है, ये अध्यात्म की पद्धति की बात चल रही है, वहाँ हमें आगम की बात बीच में डरानी नहीं है, ये बात हमेशा हमेशा ख्याल करना वरना और उलझन में पड़ जाएंगे। दोनों पद्धति अलग अलग है, दोनों का स्तर अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। आगम के सिद्धांतों का यही उद्देश्य है कि वस्तु के स्वरूप के बंधारण में, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कहीं गलत फहमी नहीं हो, द्रव्य क्षेत्र का भाव, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वेद गुण गुण के जो भेद है, इस भेद को वस्तु के स्वरूप के निरूपण करने वाला जो द्रव्यानुयोग का आगम है उसको बराबर समझे। इसलिए इस विषय में जो बुद्धि पूर्वक गलत मान्यता है वो निकल जाए, गलत अभिप्राय वो छूट जाए, फिर अपने स्वरूप में आना है, तो इसके लिए अध्यात्म का विषय अलग है। तो एक तो गलत जगह से छूटने के लिए हमें काम में लेना है आगम के सिद्धांत, जब हमारे समय ठीक हो गए वस्तु के भंडारण के विषय में, तब हमें हमारी स्वरूप की दृष्टि कैसी हो, स्वरूप का संवेदन कैसे हो और स्वरूप में लीनता कैसे हो, इसके लिए अध्यात्म में हमें किन किन बातों, किस किस प्रकार से, कहाँ मुख्यता, कहाँ गौणता, क्या कितना वजन, कहाँ वजन उठा लेना, ये सब बातें हमें ग्रहण करनी होगी, और इससे कार्य सिद्धि होती है स्वरूप में आश्रय होने की, वरना स्वरूप का आश्रय होता नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है अध्यात्म की, जो त्रिकाली ध्रुव धाम है वो उतना महिमावंत है, उतना महिमावंत है कि उसकी महिमा आते और सब चीजों की महिमा छिड़ जाती है, इसलिए उसको परमात्म प्रकाश में परम भाव कहा है। क्या है ये परम भाव? स्वरूप परमात्मा है, कारण परमात्मा, इसके आगे एक समय की मोक्ष पर्याय भी अपरम भाव है, परम भाव नहीं कही वहां, अपरम भाव कही है। ये प्रवचन, तीन प्रवचन हमने दिए हैं द्रव्य दृष्टि प्रकाश के दूसरे भाग में, वहां से पढ़ लेना है। इसका तात्पर्य यह है कि वो इतना महान पदार्थ है कि इसकी मुख्यता इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है और सारा जगत गौण हो जाता है, अपनी पर्याय से लेकर के सारा जगत गौण हो जाता है। तो ये भी ये वास्तविक परिस्थिति जो होती है साधक अवस्था में उसको दर्शाने के लिए सब वचन प्रयोग है कि एक समय की पर्याय का क्षेत्र भी मेरे में नहीं है और एक शायद भाव भी है यही कारण है। इतनी महिमा आती है, इतनी भावना स्वरूप की होती है और स्वरूप इतना महान है भी।
भाव पर्याय के प्रदेश भी भिन्न है क्या?
भाव पर्याय के स्वभाव, स्वभाव पर्याय के
वाह थोड़ा आगे आ जाइए, सुनते कमते हैं,
आगे आ
जाइए। आपके यहाँ नियम सार में और प्रवचन सार में, प्रवचन सार की प्रारंभिक गाथा में जो स्वभाव पर्याय का स्वरूप कहा, स्वभाव गुण पर्याय, तो स्वभाव गुण पर्याय है क्या उसके प्रदेश भी भिन्न है? ये मेरा प्रश्न है। जिसे कारण शुद्ध पर्याय भी नियम सार में कहा है, जो पंच पंचमी भाव प्रवृत्ति से कहा है, क्या उसके प्रदेश को समझ?
कारण शुद्ध पर्याय को श्रीकाली का ही वर्तमान है, कोई उत्पाद वाली पर्याय नहीं है। तो यहाँ जो प्रदेश भिन्नत्व की बात चल रही है, ये उत्पाद वाली पर्याय की बात चल रही है। जो भी पर्याय का उत्पाद होता है और एक समय से इसका व्यय भी होता है, उसका प्रदेश त्रिकाली में नहीं है। उतनी बात
स्थान पति जो हानि गर्दी होती है वहां भी उत्पाद में है स्थान
की जो पर्याय है पर्याय वो भी उत्पाद दिए जाते
हैं। स्वभाव पर्याय कहीं
हाँ वो स्वभाव पर्याय है, स्वभाव पर्याय हो या विभाव पर्याय हो, पर्याय मात्र का प्रदेश त्रिकाली से लेकिन आगम विवेक्षा से ये बात नहीं होनी चाहिए, अध्यात्म विवेक्षा से होनी चाहिए। आगम से तो एक प्रदेश में है क्योंकि किसी भी पदार्थ के प्रदेश है वही इनके पर्याय के प्रदेश होते हैं, वही इनके गुण के प्रदेश होते हैं। ये वस्तु का स्वरूप है द्रव्यानुयोग के आगम के सिद्धांत के अनुसार। इसी को स्थापित करते हुए पर इसका विरोध नहीं करते हुए स्वरूपाश्रय करने के प्रयोजन से ये बात कही तो एक समय की शुद्ध पर्याय का प्रदेश भी भिन्न है। 182-184 जो समर अधिकार की गाथा चल रही है उसके बारात में पंडित जयचंद जी ने ये बात कही है कि क्रोध का प्रदेश भिन्न है और ज्ञान का प्रदेश भिन्न है। तो दोनों जीव की तो पर्याय है, दोनों आत्मा की पर्याय है, क्रोध में चारित्र गुण के पर्याय है, विभाव पर्याय है, पर ज्ञान आत्मा की स्वभाव पर्याय है, लेकिन दोनों के प्रवेश भिन्न है। तो एक जीव के दो गुण है, एक दूसरे क्षेत्र में परिणमन करे, एक दूसरे क्षेत्र में परिणमन करे, ऐसा कभी बन सकता है क्या?
नहीं।
गुण के पर्याय द्रव्य के पूरे क्षेत्र में परिणमन करती है, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो।
लेकिन दोनों ये साथ तो नहीं है, शुद्ध अशुद्ध ये एक समय में शुद्ध होगी ये सब आता है, दोनों ये साथ नहीं है, ये पेड़ भी हो ये साथ हो जाता
नहीं है, ऐसा नहीं है। साधक अवस्था मिश्र अवस्था है, अगर सर्वथा शुद्ध अवस्था हो तो सिद्ध अवस्था हो जाए, सर्वथा अशुद्ध हो तो मिथ्यात्वके हो जाए। तो साधक में तो दो ही है, एक साथ दो ही है, जब तो साधक पड़ा है। ये तो सब जरा अभ्यास का विषय है, थोड़ा अभ्यास प्रक्रिया
पर्याय के बारे में तो कहा है, वो तो अनादि अनंत बरतती है, भाव रूप में पड़ती है, वो तो समस्त द्रव्य में भी है और जीवों में भी अनाथ
अनंत है। वर्तमान 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 लेकर के
अलग रूप का नहीं है, एक रूप का है, अनाथ से अनंत तक
हर हर वर्तमान लेना, हर वर्तमान देना। ये प्रकरण बहुत सूक्ष्म है, اس لیے اتنی بڑی سمبھاؤنا نہیں لیں گے. آپ مان لیجیے ہیں اس سے میں تھوڑا کچھ بتا رہی ہے جو بتائیں گے آپ کو, کیونکہ اس میں تو سب مورت ہو جائیں گے. پرکرن کو ابھی لیں گے تو اور سب بیچ میں لوگ بیٹھے سب مورت ہو جائیں گے, کیونکہ عام جنتا کا وشے نہیں رہا. दर्शन मूल्य के अनुभाग में हीनता के कारणों से प्रकार आए क्या प्रश्न के कारणों से क्या
दर्शन मूल्य के अनुभाग में हीनता किस किन कारणों से किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से आए,
किस प्रकार से,
किस प्रकार के
कारणों से, उसमें भी अनुभाग घटने के बहुत से स्तर है. जैसे कि कोई गणित मिथ्या दृष्टि है जो रागी को कुदेव को मानते हैं, रागी देव को या कुदेव को एक ही बात है. सरागी देव सरागी गुरु और राग वर्धक शास्त्र तीन में से कोई निकल करके वीतरागी देव और वीतरागी गुरु और वीतरागी सिद्धांत को स्वीकार करेंगे तो दर्शन का अनुभव इसका घटेगा. फिर आगे जा करके सिद्धांतकरण से अपना आत्महित करने का एक निर्धार करने वाला भी होगा तो इसका दर्शन होता अनुभव इस निर्धार के वश तत्व ज्ञान का जितना जितना अभ्यास करेगा तो वही निर्धार साथ ही साथ रखेगा कि मेरा आत्म कल्याण कहाँ हो, कैसे हो, किन किन बातों से मेरा कल्याण होगा. तो सभी उसकी जो समय है उसमें दर्शन होता अनुवाद घटता है. इससे आगे कि जो बात इनकी समझ में आई उसी बोध को अपने आत्मा में परिणाम करने के लिए जो प्रयोग करेगा उससे दर्शन होता अनुवाद और अधिन हो जाएगा. और ऐसे प्रयोग के द्वारा ज्ञान लक्षण से अपना ज्ञान स्वभाव का जो निश्चय करेगा जिसको उन्होंने कहा कि दूसरा संकेत है श्रीमती के पत्र में, उस वक्त दक्षिण का अनुभव बहुत ही हो जाता है. इतना ही हो जाता है कि मुझे इस समय प्रसन्न हो जाता है. इसके बाद जब वही जीव को स्वरूप निश्चय होने से अपने परिणामों में स्वरूप की महिमा उमड़ पड़ती है जैसा समुद्र में भरती आती है वैसे एक भरती महिमा के स्वरूप महिमा के आती है. इसलिए आती है कि स्वरूप अनंत महिमा अनंत है इसलिए आती है. जितना महिमा अनंत स्वरूप है उतनी महिमा बराबर उसको प्रतिभास में आ जाती है तो दर्शन का अनुभव और टूट जाता है और सम्मुख का पुरुषार्थ पूर्वक भेद ज्ञान चलता है वहां शुरू होता है. उस भेद ज्ञान के प्रयोग में तो इतना अनुभव टूटता है कि जिसके टूटते टूटते ये दर्शन होने के भाव इतने कमजोर हो जाते हैं कि उसको उपशम होना पड़ता है. उसी वक्त समय दर्शन होता है जिसको उपशम समय दर्शन कहने में आता है. तो ऐसे दर्शन को उपशम करने के लिए उसको हीन करना उसको कमजोर करना ये इसका प्रोसेस है. यही प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया से दर्शन हो कमजोर होता जाए, हीन होता जाए, इतना हीन हो गए कि दर्शन के योग्य हो जाए, तो समय दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी।
ऐसे कोई कारण हो जिनसे दर्शन
हो
ही हो, ऐसे कोई कारण हो?
ये तो सब कारण की तो सब कारण ही दर्शन ही होने के, तो ये सभी कारण बताए, इतने तो बताए, और भी प्रयोजन सिद्धि और देखिए ज्यादा उसमें तो करीब 70 ऐसे प्रेड प्रमेद लिखे हैं प्रयोग से देना, ऐसे मूल तो 50-55 लिखे हैं, लेकिन एक में भी 2-3 है पेटा भेद में, प्रभेद में 70 ऐसे भेद प्रयोग है इसमें, तो ये सब कारण है, लेकिन हमें कौन सा कारण लागू पड़ता है?
इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, कोई निकल गया
मेरे बड़ी प्रयोजन सिद्धि क्या
बिक्री में है?
अरे तालू में आपका तो पुराना परिचय है, और प्रयोजन सिद्ध नहीं पड़ी तो बोलना क्या? ऑपरेशन में जिक्र नहीं हुआ था प्रयोजन सिद्धि का?
कहा तो था आपने, लेकिन वो अध्ययन में नहीं।
क्यों? छोटी सी तो किताब है, बहुत छोटी है, पढ़ने जाए तो घंटे भर का है, चिंतन करने जाए तो कितना काल लग सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए तो घंटा भर का काम है। प्रश्न में तो आपको जिज्ञासा अच्छी है, पढ़ने का उद्यम क्यों नहीं किया, ये मेरा प्रश्न है। चार आराधना में आत्म आराधना किस प्रकार है? आराधना में सेवन करना, सम्यक श्रद्धान से, सम्यक ज्ञान से, और सम्यक चारित्र से, स्वरूप रूप परिणाम करना, यही आत्म आराधना है। इसको मोक्ष मार्ग कहो, आत्म आराधना कहो, गुण भेद शेष भोग को हो, सम्यक श्रद्धान को हो, स्वरूप चारित्र को हो, ये सभी आत्म आराधना के ही भिन्न भिन्न नाम है।
दो दिन के बाद प्रश्न हमारे प्रश्न भाई आप प्रश्न दोबारा जगह में घूम रहे तो प्रश्न
चार आराधना,
चार आराधना, चार आराधना, दक्षिण ज्ञान चारित्र और तप, स्वरूप एकाग्रता है, और उसी एकाग्रता की तीव्रता को तप कहते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र और चारों आत्मा आराधना ही जी को मुक्षु जीव को पूर्णता का लक्ष्य चाहिए, अथवा आत्मा का प्रार्थना नियम सारणी के प्रवचन में कुलकुल आचार्य नारायण को आत्मभावना के बारे में निरूपण आया था, क्या मुक्षु जीव के लिए भी यही नियमसार लागू होगा? यही होता है तो पूर्णता का लक्ष्य एवं आत्मा का लक्ष्य ऐसे दो लक्ष्य कैसे हो सकते हैं? ठीक प्रश्न है। जहां तक आत्मा लक्ष्य में नहीं आया, आत्मस्वरूप लक्ष्य में नहीं आया, इसके पहले प्रारंभ में गुरुदेव ने सूत्र दिया है पूर्णता का लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य होने के बाद उसकी अंतर खोज चलती है जब, और इस खोज के द्वारा ज्ञान उपयोग लक्षण से ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य होता है,
तो दोनों को लक्ष्य कहते हैं, लेकिन जो स्वभाव है वो आश्रय करने के लिए है और जो पूर्णता है वो आश्रय करने के लिए नहीं है, पहुंचने के लिए है। क्या कहां पहुंचना है कि हमें पूर्ण शुद्ध होना है, वहां पहुंचना है, वो पर्याय सापेक्ष बात है। और
सामान्य विशेष रूप विरहात सा अस्तित्व एवं तजेत क्या विधता चितो के भवते व्याप्यो विना व्यापकार आत्मा से अंतर पेज देन नियतु प्रज्ञप्ति रूपा उचित अर्थ है तेन चित नियतम प्रज्ञप्ति रूपा के किस कारण से चेतना मात्र सत्ता अवश्य पर दर्शन ऐसा नाम ज्ञान ऐसा नाम ये दो नाम संज्ञा के द्वारा उपदिष्ट हो। चेतना है वो दर्शन और ज्ञान ऐसे दो प्रकार के नाम के द्वारा इसका उपदेश हो। किसी भी एक को मत छोड़े, ज्ञान को ग्रहण करे और दर्शन को नहीं ग्रहण करे, ऐसा नहीं हो। चेतना कहने से दोनों आ जाता है। चैतन्य सामान्य दर्शन उपयोग है, चैतन्य विशेष ज्ञानोपयोग है, ऐसा चेतना में दोनों गुण का समावेश हो जाता है। भावार्थ इस प्रकार है कि एक सत्वरूप चेतना है उसके नाम दो। एक सत्वरूप एक अस्तित्व रूप चेतना है उसके नाम दो है, एक तो दर्शन ऐसा नाम, दूसरा ज्ञान ऐसा नाम। दर्शन में भी चेतना है, ज्ञान में भी चेतना है। एक नाम से पुकारना हो बोलना हो तो चेतना कह सकते हैं। हाँ, उसमें दर्शन और ज्ञान समाविष्ट है, ऐसा नहीं चलता। दर्शन है वो ज्ञान नहीं, ज्ञान है वो दर्शन नहीं। ऐसे विशेष रूप से दो गुण है और सामान्य रूप से चेतना नाम का एक गुण है, ऐसा नहीं। ऐसा भी ऐसा नहीं, इस प्रकार से नहीं लेना है। यानी अभेद मीमांसा से ज्ञान का प्रकट प्रकाश अनंत गुणों को जानता है। ज्ञान रूपी विशेष गुण को परिणति परिणय वेदे आस्वादे व अनुपम आनंद फल उपजता है। इस प्रकार दर्शन को परिणति परिणय वेदे आस्वादे और सुख फल उपजता है। ठीक इसी प्रकार प्रभु गुणों को परिणमे परिणति परिणमे वेदे आस्वादे इस प्रकार आनंद अनंत अखंडित अनुपम रस सहित उपजता है। इसलिए सर्व गुणों के रस का परिणति द्वारा अनुभव कराया गया है। ज्ञान और दर्शन के दो भेद से यह वर्णन किया है। तो ज्ञान से भी परिणमन होता है सम्यक स्वाभिमुख अंतर्मुख और दर्शन का भी परिणमन होता है। तो आनंद आत्मा के आनंद और आत्मा के सुख की उत्पत्ति होती है। तो अनुभव से जिसका फल आनंद आता है जिसका फल सुख आता है उतना यहाँ कहने का आगे कहेंगे नीचे कि जो सर्वगुण रस के पुंज रूप है उस चेतना गुण का संक्षिप्त मात्र यहाँ वर्णन किया जाता है। सर्व गुणों में ज्ञान गुण प्रधान है काहे से कि ज्ञान विशेष चेतना है। ज्ञान सर्व का ज्ञाता है तथा ज्ञान सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म न होता तो इंद्रिय ग्राह्य होता इसलिए सूक्ष्मत्व द्वारा ज्ञान की सिद्धि है। आत्मा में एक सूक्ष्म गुणात्मक गुण है। उस प्रकार से यहाँ पर एक गुण से दूसरा गुण से तीसरा गुण का वर्णन किया है। तो सब गुणों का वर्णन किया है और कोई खास बात नहीं है। अनेक गुण को दिखाने के लिए वो बात नित्यन जी का ही है। उसमें ज्ञान अधिकार दर्शन अधिकार ऐसा अलग अलग अधिकार लिखा है। वहां अधिक स्पष्टीकरण है। नित्यन जी का ही ग्रंथ है। जी थे तो करीब 250 साल पहले अजमेर के पास जो आमेर है जिसको आमेर में हुए बहुत समर्थ ज्ञानी थे। उन्होंने जो अनुभव प्रकाश विलास और दूसरे भी ज्ञान दर्पण आदि हरे ग्रंथ छोटे छोटे लिखे हैं ये मालूम पड़ता है उनका सिद्धांत ज्ञान और इसका अनुभव कितना समर्थ था कितना तगड़ा था से मालूम पड़ता है। वेदेव अधिकार लिखा है नोट प्रकाश बहुत बढ़िया लिखा है। हाँ भगवान के वितराग देव की स्थापना क्यों हम करते हैं उससे पारमार्थिक लाभ क्या है उसको पारमार्थिक बताते हैं। और इससे ये सिद्ध होता है जगत में देव नाम से तो बहुत से बातें हैं देवलोक के प्राणियों को भी देव कहते हैं चार गति में, लेकिन वास्तव में तो यहाँ सुगल की जो संपत्ति है उसका प्रकार मनुष्य रूप से कोई विशिष्ट प्रकार का होता है, इसलिए वैकल्पिक परमाणु के कारण से उसको दिव्य संपत्ति धने जो होते हैं उसको देव कहते हैं, लेकिन उसमें भी मिथ्या दृष्टि ज्यादा है, सभी दृष्टि बहुत कम है। ऐसे जगत में भी सभी संप्रदाय में अपने अपने देव है, लेकिन जो आत्मा के पूर्ण परिपूर्ण दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं और जो परिपूर्ण वितरण होते हैं हर 18 दोषों से रहित होते हैं, उसे तृषा न हो, भूख न हो, निद्रा न हो, स्वेद न हो, ऐसे परिपूर्ण वितरण और परिपूर्ण ज्ञान के धनी होते हैं केवल ज्ञान के, उसी को ही देव मानना चाहिए। इसके सिवा किसी को देव के रूप में अंगीकार नहीं करना चाहिए, और परिपूर्ण विद्राग होने से उनको संपूर्ण त्याग होता है, या संपूर्ण त्याग होता है वही संपूर्ण विद्रागता होती है, या संपूर्ण विद्रागता होती है वही संपूर्ण त्याग यथार्थ रूप में होता है, तो वही परिपूर्ण ज्ञान होता है, इसके सिवा परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसलिए भगवान को तो कुछ मात्र परिग्रह नहीं होता, भगवान को नहीं होता क्या, हमारे गुरुओं को भी नहीं होता जो मुनिराज है, ये कुछ मात्र परिग्रह नहीं होते हैं, उनको किंचित मात्र परिग्रह नहीं होता है, वो तो अपने देह को भी परिग्रह समझते हैं, इसके अलावा ज्यादा परिग्रह का तो कोई सवाल होता ही नहीं, क्योंकि पीछे का मंडल है वो तो एक संयम के उपकरण है, किसी को नहीं भी होता है तो भी कुछ मात्र परिग्रह नहीं, अंतर बाह्य निर्ग्रह होते हैं वही गुरु होते हैं, विचार परिपूर्ण होते हैं वही देव होते हैं, और जब मुनि को भी परिग्रह नहीं है तो भगवान को तो परिग्रह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये तो मुनिंद्र है, मुनियों में भी इंद्र मैंने सर्वोत्कृष्ट मुनिंद्रा जो शुक्ल ध्यान की प्राप्ति में होती है और परिपूर्ण विद्राक्ता वर्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी को ये देव कहते हैं, निग्रह को गुरु कहते हैं, और इनके कई हुए जो वाणी है उनको आगम निरागम और शास्त्र कहते हैं, ऐसे विद्राग देव गुरु शास्त्र की जो परंपरा है तो हमारे विदुर संप्रदाय में वो सही है, और देव के नाम के और भी संप्रदाय है उसमें विकृतियाँ आई नहीं 2500 साल में राहु भगवान के निर्वाण कराने के बाद जो आई है वो बड़े हुए हैं, लेकिन वो मालूम पड़ता है कि ये जो शुद्ध आत्माएं हैं इसमें कई भी प्रकार के विकृतियाँ नहीं होती है, कोई देव शास्त्र को अच्छे तरह समझना चाहिए, और इसका स्वरूप दिखाने वाले ज्ञानी पुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो समाज के बीच में रहते हैं तो समाज को अच्छी तरह देवगुरु शास्त्र का स्वरूप जो है वो भी दर्शाते हैं, क्योंकि इनके ज्ञान में देवगुरु शास्त्र का स्वरूप अच्छी तरह मालूम पड़ता है, दूसरों को कहीं विकृतियाँ आ जाती है तो मालूम नहीं पड़ती कि क्या विकृति है, इनके ज्ञानी को ये मालूम पड़ जाती है तो देवगुरु शास्त्र का स्वरूप दिखा सकते हैं, ऐसे एक विशिष्ट शास्त्र का संप्रदाय। यथार्थपणे आराधना का स्वरूप तो वो है कि इनके स्वरूप को ज्ञानी के द्वारा समझे कि कैसे होते हैं विद्राग देव, कैसे निर्गत गुरु कैसे होते हैं, और इनकी वाणी इसको प्रयोगश्रुत कहते हैं तो कैसी होती है, पूर्वाद पर अनुरोध उनको ज्ञानी के द्वारा समझे, स्वीकार करें और उनके प्रति पहचान पूर्वक बहुमान आए तो ये सच्ची आराधना होती है, अगर पहचान पूर्वक बहुमान नहीं आता है पर कुल धर्म के परंपरा अनुसार आता है नमो अनंतानंद को आगे बोलने में सिद्ध पद के अवमानना नहीं होती है, अवमानना हमको नहीं लगती है, इसलिए हम हमेशा पहले अनंत को ही नमस्कार करते हैं, फिर बाद में सिद्ध पद को नमस्कार करते हैं। तो उसमें प्रत्यक्षता का संकेत है कि अनंत भगवान प्रत्यक्ष रूप से लोक में उपलब्ध है, जबकि सिद्ध भगवान कतई लोक में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो हम इनके द्वारा स्वीकार करते हैं, अनंत के द्वारा या ज्ञानी गुरु के द्वारा या सतपुरुष के द्वारा हम सिद्ध पद का स्वीकार करते हैं। ये प्रत्यक्ष होते नहीं किसी को, क्योंकि वो सिद्धालय में विराजते हैं, और यह शरीर ही होने से अंतरिक ज्ञान गोचर इनका दर्शन भी नहीं होता है, जबकि अनंत भगवान का दर्शन तो इंद्रिय ज्ञान से भी होता है कि समुद्रण में विराजमान है। इसलिए प्रत्यक्षता के कारण से प्रत्यक्ष जो होते हैं इनका विशेष बहुमान करने से तो ऊपर के गुणस्थान वालों की अवमानना होती है, ऐसा कभी मानना नहीं चाहिए, ऐसा हो गया ऐसी समझ नहीं होनी चाहिए कि इसमें अविवेक होता है या अवमानना होती है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लाभ तो होगा वो प्रत्यक्षता से होगा, तो किसी को लाभ होने का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन नहीं पाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बिना उपकार कैसे मानेंगे। इस कारण से प्रत्यक्षता का विशेषता बताने में परोक्षता के ऊंचे पद वालों के लिए गौरवता की है कि परोक्षता के कारण से की है, ये बात है। मानिए आपने कि सत्पुरुष भी विद्यमान है, निग्रंथ गुरु भी विद्यमान है, सर्वज्ञ परमात्मा भी विद्यमान है, एक समुष्ण में तीनों होते हैं, हाँ तीनों सजीवन मूर्ति है, तो फिर बहुमान हमको किसके प्रति आएगा, तो भगवान के प्रति विशेष आएगा, क्योंकि वो भी प्रत्यक्ष है हमारे यहाँ, और परिपूर्ण विद्राग के रूप में है, तो उसका बहुमान आएगा। लेकिन वो भी कब, कि अगर सत्पुरुष के द्वारा इसका स्वरूप पहचाना हो तब, वरना नहीं, ये बात है। इसलिए वो हमारे वक्तव्य में जो बात आती है सत्पुरुषवाद, इसका कारण यही है कि हर बात वो खुली है, वो वहाँ से विशेष रूप से खुली है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति समाज के मित्र अधिक दोष है। उसमें और उनकी दशा जो है वो बाहर में त्यागादी रूप नहीं होने से वहां भूल होने की संभावना होती है, और अनादिकाल से ये भूल हुई भी है, इसलिए इस बात को थोड़ा सतर्क होकर के सावचेत होकर के इस बात को संभालना है, वरना जो भूल अनादि से हुई है वही भूल हो जाएगी, ये बात जरूरी है। यहाँ कहते हैं कि चेतना के दो ऐसा भेद होता है तो हो, विरुद्ध तो कुछ नहीं है, ऐसे अर्थ को इस कलश के द्वारा दृढ़ करते हैं कि चेतना के दो भेद दर्शन और ज्ञान है, उसमें दो भेद होता हो तो उसमें कोई विरुद्धता नहीं है, वो विरुद्ध बात है, क्योंकि उसमें वास्तविक रूप से ऐसा स्वरूप है इसका। चेत जगती चेतना अद्वैता तत्ति रूपम त्यजे का अस्तित्व एवं त्यजे, जो ऐसा है कि त्रैलोक्यवर्ती जीवों में प्रकट है स्वपर ग्राहक शक्ति, चेतना को क्या कहा, स्वपर ग्राहक शक्ति, वो जगत में प्रसिद्ध है, कैसे है कि अद्वैत मैंने एक प्रकाश रूप है, चेतना शक्ति एक है, अद्वैत दृष्टिकोण से अभेद दृष्टिकोण से देखें तो, तथापि अद्वैत होने पर भी द्रव जप्ति रूपम त्यजेत, अर्थात दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना ऐसे दो भेदों को दो नामों को छोड़ दें, इसके दो पड़ा को छोड़ दें तो उसमें तीन दोष उत्पन्न होते हैं। या विशेष रूप से इस कलश में वो बात लिया है, गाथा में उसकी चर्चा नहीं थी, वो चर्चा भगवान अमृतचंद्र आचार्य कलश में करते हैं। हम तेरहवें गुणस्थान वाले अरिहंत देव को भी भगवान कहते हैं, चौदहवें गुणस्थान वाले देव को भी देव कहते हैं, भले इसका काल अंत है लेकिन सहयोगी के लिए है, पर सुषित परमात्मा को भी हम भगवान कहते हैं और आचार्य देव को भी हम भगवान कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भगवान अमृतचंद्र आचार्य ने कहते हैं, क्यों? तो जिसने भाव भ्रमण का अभाव करने का कार्य संपन्न किया है, भाव अंत किया है, वो तो भगवंत है, भाव का पूर्ता हो गया है, पर अल्पकाल में होने वाला है तो हो गया है, भावी निगम में से इसका हो गया, ऐसा कहने का। तो कहते हैं कि दर्शन चेतना, ज्ञान रूप चेतना, ऐसे दो नाम को यानी दो भेद को छोड़े तो उसमें तीन दोष उत्पन्न होते हैं, तीन प्रकार के। प्रथम दोष, सा अस्तित्व एव त्यजेत, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर हम दर्शन ज्ञान का स्वीकार नहीं करते हैं तो चेतना का अस्तित्व खत्म हो जाएगा हमारे श्रद्धा ज्ञान में। चेतना का अस्तित्व तो ऐसे खत्म नहीं होता है वस्तु स्वरूप से, लेकिन श्रद्धा ज्ञान में उसका अभाव हो जाएगा। और यही मिथ्यात्व है, अपना अस्तित्व का अस्वीकार करने वाला भाव को ही मिथ्यात्व कहने में आता है। जगत में जितनी भी मिथ्या मत है वो तो एक या दूसरे प्रकार से अपने अस्तित्व का अस्वीकार करने वाले मत है। एक जैन मत को, जैनेन्द्र के मत को छोड़ करके जितने भी अभिप्राय है, मत है, उस मत का कॉमन फैक्टर कौन सा है, उसमें सामान्य बात को क्या है कि अपने अस्तित्व का स्वीकार नहीं करना, अस्वीकार करना। और इसलिए मिथ्यात्व का फल निगोद लिया है, क्यों? कि भाव से जो अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है उनके द्रव्य की हालत ऐसी होती है कि जगत के जीव भी इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। जैसे वायु को पुत्र के रूप में स्वीकार करता है जगत, लेकिन वायु भी एक काय है, निगोद के जीव के एक इंद्र के एक काय है, ये जैन दर्शन के अलावा नहीं। ऐसे पानी, पानी पानी भी काय है, पानी में जो त्रस जीव है वो नहीं लेना है, पानी भी एक काय है, तो जीव का शरीर है उसको जैन दर्शन के अलावा कोई नहीं स्वीकारते। अग्नि भी एक काय है, जीव का शरीर है वो, उसको जैन दर्शन के अलावा कोई सुंदर रूप से सब स्वीकारते हैं, जड़ के रूप में। पंच महाभूत कहते हैं ना, महाभूत में नहीं जड़, चैतन्य का शरीर है, तो जगत भी उसको जीव रूप के रूप में स्वीकार नहीं करता, क्यों? कि खुद ने ही अपना स्वीकार जीव के रूप में नहीं किया, इसलिए अपना नास्तित्व को स्वीकार करने वाले को यही हालत नैसर्गिक रूप से एक कुदरत की व्यवस्था है, ऐसे में इसकी हालत बन जाती है। इसलिए हम लोग जो स्वाध्याय करते हैं को सही बात समझने के लिए है कि हम कहीं हमारा अस्तित्व को दूसरे रूप में तो नहीं समझते, जैसे हम समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम फलाने फलाने हैं, हम बनिया है, वो है व्यापारी है, फलाने हैं, तो ये सब है वो हमारा अस्तित्व का, चैतन्य अस्तित्व का अस्वीकार है। क्या हम चैतन्य मात्र में, चेतना मात्र आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धा ज्ञान में स्वीकार नहीं आता है और दूसरे रूप में हम अपने आप को स्वीकारते हैं तो हमारे नास्तित्व को दृढ़ करते हैं, तो नास्ति 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 होकर के निगोद में चले जाएगा, ये बात बताएगी। इसलिए सबसे पहले इस अभिप्राय को खत्म करने के लिए स्वाध्याय आदि पद्धति का परंपरा हमारे संप्रदाय में है, इसका यही कारण है कि इसके पीछे एक पारमार्थिक हेतु खड़ा है। कैसी है चेतना? एक प्रकाश रूप है, तथापि दर्शन रूप चेतना, ज्ञान रूप चेतना ऐसे दो नामों को छोड़े, दो भेदों को छोड़े, तो उसमें तीन दोष उत्पन्न हो जाता है। उसमें पहला दोष, वह चेतना अपने सत्व को अवश्य छोड़े, सत्व मैंने सत्ता, सत्ता के गुण को सत्व कहते हैं, सत्ता अस्तित्व गुण को सत्व कहते हैं, चेतना के गुण को चैतन्य कहते हैं, उसको सत्व कहते हैं। भावार्थ